ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। राज्यसभा ने आज ऑयल फील्ड विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी। ये विधेयक खनिज तेलों की परिभाषा में विस्तार के बारे में है, जिसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हाइड्रोकार्बन, कोलबैग, मीथेन और शेल गैस शामिल हैं। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये विधेयक नीति स्थिरता, बुनियादी ढांचा साझा करना, कार्बन कैप्चर, अपराधीकरण को हटाना और विवादों को आसान समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ शब्दावली बदली गई है और इससे राज्यों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सरकार और विपक्ष की 5 दिन का गतिरोध समाप्त होने के बाद आज सामान्य रूप से हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया गया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह के विरुद्ध कथित रिश्वत के मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उन्हें शून्यकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाने को कहा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने और गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री ने चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में लोकसभा में कहा कि लगातार राजनयिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने वाली हाल की घटनाओं से भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये सच्चा सामाजिक न्याय है। श्री मोदी ने कहा कि देश औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए अपराध कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। श्री मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों और चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों को भी बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका अनुसरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सुगम्य भारत अभियान आज 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित महायुति गठबंधन की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के नाम के बारे में स्थिति अभी अस्पष्ट बनी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में बृहस्पतिवार यानी 5 दिसम्बर शाम 5 बजे होना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में एथेनॉल और मिथेनॉल जैसे जैव ईंधनों के उपयोग पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री गडकरी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का आयात घटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत लगभग 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधनों का आयात करता है और इसे कम करने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप की 7वीं बाजी में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश और वर्तमान चैंपियन जिंग लेरिन के बीच मुकाबला जारी है। 14 बाजी के मुकाबले में लगातार 3 बाजियां ड्रॉ रहने के बाद दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक लेकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।